आयशा नक्श के साथ हॉर्स राइडिंग क्लब में जा रही थी, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे बताया कि अभिमन्यु ने आयशा को बुलाया है। आयशा जब अभिमन्यु के पास पहुंची, तब तक इशिका तैयार होकर आ चुकी थी। उसने सफ़ेद रंग की राइडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। इशिका ने अपने आधे बालों को बन में बांध रखा था, जबकि बाकी के आधे बाल खुले थे। हल्की मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आयशा ने जलन भरी निगाहों से उसे देखा। तभी अभिमन्यु ने कहा, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हें अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो अब तुम्हें थोड़ी तमीज़ सिखाने का टाइम आ गया है। ऐसा करो, अपनी आंटी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। अभिमन्यु ने यहाँ आंटी इशिका के लिए कहा था। आयशा ने तुरंत समझते हुए हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा था। आयशा ने फिर इशिका की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के वहां खड़ी थी। इशिका के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलना आयशा के लिए उसकी सबसे बड़ी इंसल्ट थी। आज तक उसने इशिका से अपना हर छोटा काम करवाया था और उसके साथ अपनी नौकरानी की तरह बर्ताव करती थी, फिर आज वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने जैसा छोटा काम कैसे कर सकती थी? आयशा वहां चुपचाप बिना कुछ किए खड़ी थी। तभी अभिमन्यु ने तेज़ और सख्त आवाज़ में कहा, हमें देर हो रही है। आयशा ने सिर हिलाया और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इशिका की तरफ देखकर कहा, आंटी प्लीज़ अंदर बैठिए। इशिका ने कुछ नहीं कहा और अंदर जाकर बैठ गई। इशिका के बैठते ही दूसरी तरफ अभिमन्यु आ गया था। आयशा ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और इस वक्त वो अपमान का घूंट पीते हुए अपनी मुट्ठियाँ भींच कर खड़ी थी। वहीं गाड़ी के अंदर बैठते ही इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। इशिका समझ गई थी कि ये सब अभिमन्यु ने इशिका का बदला लेने के लिए किया है। थोड़ी देर पहले आयशा सबके सामने इशिका को नीचा गिथाने की कोशिश कर रही थी। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर नज़रें नीचे करके धीरे से कहा, जब वो छोटी थी तब उसे घोड़े से डर लगता था। मालविका के कहने पर मुझे उसका काम करना पड़ता था। हालांकि जब वो राइडिंग करती थी तो मुझे बहुत जेलस फील होता था। यही सोचती थी कि काश मुझे भी ये सब मिल पाता, लेकिन बाद में मैंने भी। इशिका बोल रही थी तभी अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में काटते हुए उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग इतनी पसंद है तो डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इशिका उसे ये कहना चाहती थी कि उसने भी हॉर्स राइडिंग सीखा है, लेकिन अभिमन्यु ने इतने प्यार से उसे सिखाने को कहा तो इशिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, ठीक है, पुरानी बातों को अपने दिल से निकाल दो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारी ज़िंदगी अब मुश्किल नहीं रहेगी, अभिमन्यु ने काफ़ी इंटेंसिटी से कहा। इशिका ने उसका सम्मान रखते हुए सिर हिला दिया। हालांकि डॉक्टर मर्चेंट बनने के बाद उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर अभिमन्यु इतने प्यार से उसकी केयर कर रहा था तो इशिका उसे मना करके छोटा नहीं महसूस करवाना चाहती थी। जल्द ही वो दोनों राइडिंग क्लब में पहुंच गए थे। वहां जाते ही अभिमन्यु सीधा चेंजिंग रूम में चला गया। इशिका पहले से चेंज करके आई थी, इस वजह से वो बाहर टहलते हुए उसका इंतजार कर रही थी। वहीं आयशा नक्श के साथ वहां पहुंच तो चुकी थी, लेकिन वो जानबूझकर अभिमन्यु और इशिका से दूर थी। आयशा को डर था कि कहीं अभिमन्यु फिर से उसे इशिका का कोई काम करने को ना कहे। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। इशिका वहां खड़ी होकर अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी। तभी उसे कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई दी जो आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने दबी आवाज़ में कहा, अरे तुमने सुना, आज दिल्ली के सिंघानिया परिवार के कुछ लोग भी इस जगह पर इकट्ठा होने के लिए आए हैं। हाँ सुना मैंने, कोशिश यही है कि उनसे दूर ही रहूंगा। खामखा पंगा लेकर कोई फ़ायदा नहीं, सुना है उसे गुस्सा बहुत आता है। ऊपर से एक बार किसी से लड़ाई या बहस हो जाने के बाद वो उसे बर्बाद भी कर देता है, दूसरे लड़के ने जवाब में कहा। इशिका को उनकी बात समझ नहीं आई, आखिर दिल्ली से सिंघानिया फैमिली से कौन यहाँ आया था? इशिका वहाँ खड़ी उनकी बातों पर गौर कर रही थी। तभी एक चेंजिंग रूम में से राघव बाहर निकला। इशिका को देखते ही वो तुरंत उसके पास जाकर बोला, अरे वहाँ मिस सिंघानिया, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप भी यहीं पर हैं। पिछली बार राघव को इशिका को लेकर गलतफहमी हो गई थी, तब उसने उसे काफ़ी भला बुरा कहा था, लेकिन अब सब ठीक था तो वो फ्रेंडली वे में बात कर रहा था। वहीं इशिका वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राघव से मिलने के लिए ही आई थी। इशिका ने बात को बिना घुमाए फिराए राघव से सीधे सीधे पूछा, कियारा ने बताया था कि वो फ़ोटो बनकर तैयार हो गई है और आपके पास मौजूद है, क्या आप मुझे वो फ़ोटो दिखा सकते हैं? एक्चुअली मुझे जानना था कि क्या मैं उस फ़ोटो से किसी तरह से कनेक्टेड हूँ। इशिका थोड़ी बेचैन हो रही थी। राघव ने वो फ़ोटो देखी थी और उस फ़ोटो में कोई शख्स ऐसा मौजूद था जो इशिका के जैसा दिखता था। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ इस वक्त वो फ़ोटो मेरे पास मौजूद है। क्या सच में? क्या आप मुझे वो फ़ोटो दिखा सकते हैं अभी? इशिका ने जल्दी से पूछा। मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे कियारा से पता चला कि आज मॉम ने आपको डिनर पर इन्वाइट किया है। ये मामला डैड से रिलेटेड है और वो इसे लेकर खुद ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे। मिस सिंघानिया, मैं चाहता हूँ कि वो फ़ोटो वही आपको दिखाएं, राघव ने शांति से जवाब दिया। इशिका ने सिर हिला दिया, वैसे भी उसे शाम तक का ही इंतज़ार करना था। राघव ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, मैंने सुना है तुम मिसेज राजवंश हो, अभिमन्यु की पत्नी, उससे कुछ बदल गया है क्या? इशिका ने बेपरवाही से पूछा। राघव ने इधर उधर देखा और फिर इशिका के थोड़े पास आकर धीरे से कहा, बदला नहीं है लेकिन बदल सकता है। मेरे साथ दिल्ली से कुछ बड़ी बिजनेस फैमिलीज के लड़के इन्वॉल्व होने के लिए आए हैं। उनकी हैसियत किसी भी मामले में राजवंश फैमिली से कम नहीं है, कुछ तो राजवंश फैमिली से ऊपर ही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जान पहचान उनसे करवा सकता हूँ, ताकि फ्यूचर में अभिमन्यु को फायदा हो। राघव ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि पार्टी में जो भी हुआ था, कियारा ने उसके बारे में राघव को बता दिया था कि कैसे लोग इशिका की इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद उसे नाजायज बेटी का ताना मार रहे थे। वो बस इशिका के लिए कुछ करना चाहती थी, इसके लिए उसने राघव की मदद ली। अगर राघव इशिका की जान पहचान बड़ी फैमिली से करवा देता तो उनके दम पर अभिमन्यु को काफी सारी डील्स मिल सकती थी। इशिका ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ तुमने कुछ सोच समझ कर ही ऑफर रखा होगा, पर तुम जानते हो ना, अभिमन्यु को दिल्ली की किसी भी फैमिली के साथ रिलेशन रखने में इंटरेस्ट नहीं है। वो बहुत जिद्दी है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। अपने बुरे पास्ट और कड़वी यादों की वजह से वो वहां की किसी भी फैमिली के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता। अगर उसका यही बर्ताव रहा तो कल को राजवंश फैमिली के लोग उसे सीईओ की पोजीशन से हटा देंगे, जिसकी ताक में वो कब से बैठे हैं। उसके बजाय तुम उन लोगों से रिलेशन स्ट्रांग कर लो तो अभिमन्यु का फायदा हो सकता है, राघव इशिका को समझाने लगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे नेक हैं, पर इसकी सच में कोई जरूरत नहीं है, इशिका ने एक बार फिर से मना कर दिया। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें इन सब चीजों की समझ नहीं है। तुम जानती भी हो सिंघानिया फैमिली की वजह से नकुल राजवंश और नक्श राजवंश ने उन सभी फैमिलीज के साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग करने शुरू कर दिए हैं। ये सब राधिका सिंघानिया की वजह से हो रहा है। उन्होंने ही उन सब लोगों का इंट्रोडक्शन नक्श राजवंश से करवाया है और वो फ्यूचर में सबका अभिमन्यु के खिलाफ यूज करेंगे।
राधिका का नाम सुनते ही इशिका चौंक गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी राघव ने फिर से कहा, राजवंश फैमिली के लोग कैसे हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। क्या लगता है, आयशा प्रेग्नेंट है इस वजह से ये शादी हुई है? राधिका सिंघानिया ने उन्हें वादा किया था कि अगर ये शादी हो जाएगी तो वो उनकी जान पहचान उन सभी बड़ी फैमिली से करवाएगी। आयशा में ऐसा कुछ खास नहीं है, ऊपर से अब तो उसके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड भी बन गया है। फिर भी राजवंश फैमिली उसे झेल रही है तो कुछ तो कारण होगा। इशिका को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा था कि कैसे राधिका ने उर्वशी को शादी के लिए मनाया था। तो क्या आज का ये प्रोग्राम भी राधिका ने ही रखा था? उसे लगा नहीं था कि राधिका आयशा की शादी नक्श से करवाने के लिए राजवंश फैमिली के लिए इतना कुछ करेगी। इशिका के चेहरे पर कुछ पल के लिए परेशानी के भाव आ गए, जिन्हें देखकर राघव ने कहा, अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। घबराओ मत, तुम्हारे और कियारा के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस एक मौका दो, मैं सब संभाल लूँगा। इशिका ने तुरंत उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो मुझे इसकी। अचानक इशिका ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि अभिमन्यु वहां आ गया था। उसने ब्लैक कलर की राइडिंग ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। इशिका कुछ भी कहकर अभिमन्यु को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु तुरंत इशिका के पास आकर खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर राघव को घूरते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आप मेरी वाइफ से बात कर रहे हैं, कोई काम है तो मुझे बता सकते हो? अभिमन्यु की आंखों में जलन दिखाई दे रही थी। कुछ खास नहीं था, मैं वो बस, राघव सफाई देने की कोशिश कर रहा था। तभी अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, खास नहीं है तो हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए। अभिमन्यु ने तुरंत इशिका की तरफ देखकर अपना टोन सॉफ्ट करते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखनी है, तुम मेरे साथ आओ। इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और राघव को इग्नोर करके वहां से जाने लगा। राघव को लगा उसने इतना सब कुछ कहकर अपना ही टाइम खराब किया है। अभिमन्यु और इशिका वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़े थे कि राघव ने तेज और सख्त आवाज में कहा, तुम ऐसे ही यहां से नहीं जा सकते हो। अभिमन्यु ने राघव की तरफ देखा और बोरियत भरे लहजे में कहा, क्यों, कुछ बाकी रह गया है क्या? हमें बैठकर बात करनी चाहिए। दिल्ली की बिजनेस फैमिलीज में से कोई ना कोई यहाँ पर आया है और मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन उनसे करवा सकता हूँ। आखिर राघव ने अभिमन्यु के सामने पूरी बात रखी दी थी। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। राघव को गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए बोला, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? अरे सभी लोग चौहान फैमिली से कनेक्टेड नहीं हैं जो तुम अपना गुस्सा सब पर उतार रहे हो। अगर यही चलता रहा तो कल को तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटा देंगे और तुम हो कि समझ ही नहीं रहे। अच्छा मान लो कि अगर उन्होंने मुझे मेरी पोजीशन से हटा दिया तो कौन सा हम दोनों फैमिलीज के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर कहा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, राघव ने जवाब दिया। जब इस बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है तो आगे से अपना और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मिस्टर मित्तल, आपका हो गया हो तो हम यहाँ से जाएं, अभिमन्यु ने कभी भी उसी एटीट्यूड में कहा। अभिमन्यु के तेवर देखकर राघव को समझ आ गया था कि वो अपनी माँ के धोखे को इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला था। हाँ, बचपन में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, कोई भी उसकी जगह होता तो उन सब चीजों को नहीं भूलता, और वही अभिमन्यु के साथ था। उसकी माँ ने तलाक लेने के लिए टाइम से पहले ही अपने बच्चे को डिलीवर किया और फिर उसे छोड़कर चली गई। अभिमन्यु को अपनी माँ से इतनी चिढ़ हो गई थी कि अब वो उससे जुड़े हर एक शख्स को तो क्या उस शहर तक से रिश्ता नहीं रखना चाहता था। राघव ने नामे सिर हिला दिया। अभिमन्यु जब ईशिका को लेकर जाने लगा तभी राघव ने फिर से ईशिका को याद दिलाते हुए कहा, शाम का डिनर याद रखिएगा मिस सिंघानिया, वहीं पर मिलते हैं, याद है ना आपको वो फोटो देखनी है। राघव के कहते ही अभिमन्यु ने ईशिका की तरफ देखा और भौंह चढ़ाकर पूछा, ये कौन सी फोटो की बात कर रहा है? मिस्टर मित्तल ने कहा था कि उनके पास कोई फोटो है जो मुझसे जुड़ी हुई है, बस उसी के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है, ईशिका ने काफी शांति से जवाब देते हुए कहा। क्या उस डिनर में राघव भी होगा? अचानक अभिमन्यु ने पूछा। अभिमन्यु के बर्ताव पर ईशिका को हैरानी हुई। उसने धीरे से कहा, अब वो अपनी फैमिली से अलग कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स ये उस डिनर में मौजूद रहेगा। क्या हम उस फोटो को अभी नहीं देख सकते? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ देख सकते हैं, ईशिका ने जवाब में कहा। ईशिका के कहते ही अभिमन्यु ने राघव की तरफ देखकर कहा, हमें वो फोटो अभी देखनी है। राघव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना मोबाइल निकाला। उन्हें दिखाने से पहले राघव उस फोटो को खुद देख रहा था। वो तस्वीर लगभग 30 साल पुरानी थी। तस्वीर में मैडम मर्चेंट मौजूद थी जो काफी हद तक ईशिका की तरह दिख रही थी। ऐसे लग रहा था कि फोटो में उनकी कुछ एक फिजिकल फीचर को बदलकर बाहर निकाल दिया गया है और वो ईशिका के रूप में सामने खड़ी थी। उस फोटो को देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।